कर्नाटक के मंदिर शायद खाली हो गए आज। क्यों? तो भक्त क्या करेंगे फिर? मंदिर मंदिर ढूंढते ढूंढते अपनी देवियों को, अपनी मां को ढूंढते ढूंढते यहां तक आ जाएंगे, क्योंकि सभी देवियां यहां विराजमान है। कितना सुंदर दृश्य है, बहुत बहुत वर्षों पहले इस सृष्टि पर एक सम्राट हुआ था। वो एक ही राजा था संपूर्ण धरती का, और एक दिन वह घूमने निकला और घूमते घूमते बगीचे में उसके पैरों में एक कांटा चुभा, और जैसे ही कांटा चुभा उसे असहनीय वेदना हुई और उसका इलाज हुआ, दर्द की दवाई दी गई। परंतु उसने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, देश और विदेश और विश्व भर के सभी ज्ञानी पुरुष महात्मा सबको बुलाया गया और बैठक हुई कि क्या किया जाए जिससे राजा के पैरों में कांटा न चुभे, क्योंकि वो साधारण राजा नहीं था, सम्राटों का सम्राट बादशाह ऐसा वो राजा था, ऐसा वो सम्राट था, महाराजा था। तो बहुत सारे मनीषी, बहुत सारे ज्ञानी नॉलेजेबल लोग आए और उन्होंने बहुत महीनों तक डिस्कशन किया और आखिरी में एक प्रस्ताव पारित किया कि सारी ही धरती को चमड़े से ढक दिया जाए ताकि राजा के पैरों में कांटा न चुभे। जैसे ही प्रजा को यह पता चला, प्रजा सभी दुखी हो गई और प्रजा कहने लगी कि अनाज कैसे उगेगा अगर सारी धरती को ढक दिया जाए, सारी मनुष्य जाति मर जाएगी। तो सभी राजा के पास पहुंचते, याचना करते हैं। राजा कहता है बात तो सही है। तो फिर से दूसरी मीटिंग होती है दूसरे प्रस्तावों के लिए, तो फिर से देश विदेश से ज्ञानी लोग आते हैं, ज्ञानी जन, और बहुत सोचने के बाद एक प्रस्ताव पारित होता है कि इस धरती पर जितनी धूल है उसको झाड़ दिया जाए झाड़ू से। हजारों और लाखों लोग इस काम के लिए लगा दिए जाते हैं ताकि जितनी धूल है, ताकि राजा को कोई कांटा न चुभे। हजारों लाखों लोग इस काम में लग जाते हैं और धुएं के भवंडर उठते हैं, कई लाखों लोग बीमार पड़ जाते हैं उस धुएं से, बीमारियां फैलती है। फिर से सारे मजदूर किसान नागरिक प्रजा राजा के पास जाते हैं कि राजा ये क्या हो रहा है, आपके पैर में कांटा क्या चुभ गया, आपने तो ये सबको बीमार कर दिया। राजा कहता है मैं फिर सोचता हूँ। फिर से नई मीटिंग होती है और देश विदेश के सारे योगी, योगी नहीं ज्ञानी लोगों को बुलाया जाता है। एक तीसरा प्रस्ताव पारित होता है कि सारे के सारे पृथ्वी को जल से सींच डालना है, धो डालना है, ताकि धरती स्वच्छ हो जाए, कोई भी कांटा न रहे। तो हजारों लाखों लोग काम में लग जाते हैं, नदियों का पानी लिया जाता है, नदियां सूख जाती है क्योंकि पूरे धरती को धोना है, कोई भी कांटा ना बचने पाए। फिर से अकाल पड़ता है, फिर से बीमारियां, फिर से गंदगी कीचड़ इतना हो जाता है कि फिर से प्रजा नागरिक राजा के पास आते हैं क्या किया जाए। राजा अब तो सोच में पड़ जाता है अब क्या करें, और सारे लोग भी चिंतित, इतनी बड़े उनके महान विद्वान। और उसमें से एक बूढ़ा व्यक्ति सामने आता है प्रजा का और वो कहता है राजन इसका उपाय मेरे पास है, मैंने आपके लिए ये जूता बनवाया है चमड़े का, आप इसे पहन लो। राजा सोचता है ये बात आज तक मैंने क्यों नहीं सोची, मेरे पास इतने ज्ञानी जन है, इन्होंने क्यों नहीं सोची, क्या संसार के कार्य सारे काटे निकाले जा सकते हैं? क्या धरती को चमड़े से ढकना संभव है? तो हमें क्या करना चाहिए? क्या जीवन में परिस्थितियां नहीं आएगी? क्या अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं आएगी? क्या एडवर्स सिचुएशन नहीं आएंगे? क्या मुश्किल लोग सामने नहीं आएंगे? तो हमें क्या करना है? स्वयं को बचाना है, खुद ही जूते पहन लेने हैं, ऐसा एक कवच धारण कर लेना है। और वो कवच कौन सा है? नियमों का और मर्यादाओं का। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इस जीवन की नियम और मर्यादा है। हो सकता है हमारे कुछ कुछ शब्द बहुत कटु लगे, उसके लिए पहले ही कह रहे हैं माफ कर देना। परंतु ब्राह्मण जीवन जो है नियमों और मर्यादाओं में बंधा हुआ है। हम सोच रहे थे पहले नियमों की चर्चा करें फिर मर्यादाओं की, परंतु अभी बहनें यहां सब बैठ गई है, तो सबसे पहले नियम, बाद में सीधा मर्यादा से चालू करते हैं। आज की मुरली किस पर थी? संपूर्ण पवित्रता पर। 15 नवंबर 2003, हम जब बाबा से मिले उससे 15 दिन पहले एक अव्यक्त वाणी है बाबा की पवित्रता के ऊपर। शायद ऐसे शब्द, बाबा का वह रूप जो है उस मुरली में पवित्रता के लिए धर्मराज का रूप है जैसे। सुनिए सभी ने, ब्राह्मण माना ही पवित्र, इस ब्राह्मण जीवन में अपवित्रता जैसे काला दाग है सफेद कागज के ऊपर, इसे हल्का नहीं समझना। सुनो, कान खोल के सुनो, दोनों ही कान खोल के सुनना। यह व्यक्त महावाक्य है बाबा के। इसे ये नहीं कह देना कि हो गया, इसे ये नहीं कह देना कि थोड़ा सा है, थोड़ा नहीं कॉमा बहुत है, फुल स्टॉप। बाबा के महावाक्य है। तो इस ब्राह्मण जीवन की सबसे पहली मर्यादा कौन सी है? संपूर्ण पवित्रता। यदि कोई कुमार या कोई अधर कुमार या संसार का कोई व्यक्ति यदि मंदिर में जाए और उस देवी के प्रति उसके मन में विकार की भावना हो और उसे खुद ये पता चल जाए, तो उसे कैसा लगेगा? आत्मग्लानी होगी। और कैसा लगेगा? बहुत खराब लगेगा। और वो बात यदि दूसरों को भी पता चल जाए तो क्या कर देंगे? उसको निकाल देंगे। अक्षम्य अपराध, अनपार्डनेबल क्राइम। तो इस ब्राह्मण जीवन की सबसे पहली मर्यादा है संपूर्ण पवित्रता। हर एक को आत्मा देखना। इसलिए सभी कुमार, इसलिए सभी अधर कुमार, इस बात को हमेशा अपनी बुद्धि में धारण करके रखे कि सेवा केंद्र पर जो सामने यहां बैठी है ये सब कौन है? कौन है? सभी मंदिरों में जिनकी पूजा हो रही है वही है। शक्ति स्वरूपिना यही है। ये वही आत्माएं हैं जिन्होंने पवित्रता के व्रत को धारण किया है। क्या इनके त्याग के पीछे आगे संसार का कोई त्याग है? क्या इस जीवन को चुनना संसार का सबसे श्रेष्ठ जीवन नहीं, सबसे श्रेष्ठ त्याग नहीं? इसलिए सबसे पहली बात कि जब हम सेवा केंद्र पर जाते हैं तो हमारी दृष्टि संपूर्ण पवित्रता की हो। जगदीश भाई एक बात सुनाते थे एक कन्या की, जो कि पानी भर रही थी। वहां एक युवक आता है और वो युवक कहता है कि मुझे प्यास लगी है, पानी दो। वो कन्या कहती है पानी मैं दूंगी पर अंग से अंग ना लगे, ये वचन दो तो ही पानी दूंगी। वो युवक कहता है ठीक है और वो पानी पीता है। कुछ समय पश्चात उन दोनों को भी पता नहीं रहता है, पर दोनों की शादी हो जाती है, उनके मां बाप शादी कर देते हैं और शादी के बाद दोनों आमने सामने आते हैं। तो वो कुमारी अपने पति से कहती है अपना वचन याद रखना, अपना वचन याद रखना, ऐसी अनटच्ड प्यूरिटी। जिन्होंने अपने जीवन में धारण की है क्या वह शक्ति असाधारण हो सकती है? संसार की सभी स्त्रियां एक तरफ और एक ब्रह्मा कुमारी एक तरफ, क्या इतना आदर, क्या इतना सम्मान उनके प्रति है? क्या हमारी दृष्टि इतनी ऊंची है, या हम ये समझते हैं ये छोटी है, या हम ये समझते हैं इनके पास अनुभव कम है, या हम ये समझते हैं इन्हें संसार का ज्ञान नहीं है? कहीं हमारी ऐसी दृष्टि तो नहीं? क्या ये समझते हैं ये पढ़ी लिखी कम है? उनको निमित्त किसने बनाया? इस संसार में भगवान आया, उसने यज्ञ रचा और उस अपने यज्ञ में जिनको निमित्त बनाया वह ये है, इसलिए उनको साधारण नहीं समझना। यज्ञ की वेदी पर अपने यौवन को समर्पित करने वाली क्या साधारण हो सकती है? संपूर्ण जीवन स्वाहा करने वाली यह वही अर्पिता, समर्पिता और निवेदिता है। इनके प्रति हमारी कौन सी दृष्टि है? यदि हम भूल गए हैं तो फिर से रिवाइज कराए स्वयं को। जो मंदिरों में जिनकी पूजा हो रही है वही यह है, चाहे वो कैसे भी हो, परंतु इस श्रेष्ठ जीवन को चुना है, इस महान जीवन को चुना है, पग पग पर झुक झुक सिक सिक मरमर यह पाठ है। सरेंडर अर्थात सर अंडर। और हम जो संसार में बैठे हैं, जो संसार के भोग विलास में लिप्त है, क्या इनकी दिव्यता को जान पाएंगे, समझ पाएंगे? इसके लिए सभी कुमार, सभी अधर कुमार सावधान। दूसरी तरफ माताएं हैं। माताएं क्या समझती है कौन बैठी है सामने? कौन बैठी है? या समझती है हम इनसे अधिक होशियार है, हम ज्यादा पढ़ी लिखी है? कोई कुमारिया है यहां, या जो सर्विस करती है, या जो पैसे कमाते हैं? ये कभी ना समझना। एक ब्रह्मा कुमारी का जीवन जो है वो त्यागमय जीवन है, पग पग पर समर्पण है। अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ यज्ञ के लिए है। यदि इनकी भी यदि सेवा की जाए केवल, तो भी महान पुण्य में गिने जाएगा। तो ऐसी इस यज्ञ की सभी बहनें, इस यज्ञ की सभी टीचर्स, इस संसार की सर्व महान आत्माएं हैं। सफेद साड़ी पहनी हो, जटाएं खुली हो, तुम हो राज ऋषि। स्वामी विवेकानंद ने एक बार अपने एक प्रवचन में कहा था, विदेश में उनकी मृत्यु हुई 1902 में, बाबा आए 1936 में। एक भविष्यवाणी की थी, अ टाइम विल कम व्हेन इंडियन लेडी क्लैड इन व्हाइट शैल स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड द वर्ल्ड अक्रॉस। एक समय आएगा जब भारतीय नारी श्वेत वस्त्र धारण करेगी और सारे विश्व में परमात्मा संदेश फैलाएगी। ये वही आत्माएं हैं, जन्म जन्म की तपस्वी आत्माएं, जिन्होंने संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है, ऐसी अनटच्ड पवित्रता जिनमें है। यदि हम ये सोचे इनके प्रति व्यर्थ संकल्प, नकारात्मक भाव या कमेंट्स या टीका या टिप्पणी या परचिंतन या गुटबाजी, हमने देखा है अपना एक ग्रुप बना लेते हैं बहनों के विरुद्ध, यदि हम ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, यदि कुमार और भाई अपनी दृष्टि में जरा भी अपवित्रता है, तो महान पाप की श्रेणी में वो गिना जाएगा। एक का 100 गुना। इसलिए जितना हो सके अपनी प्यूरिटी को रिवाइज करना, अपने रिलेशनशिप को भी रिवाइज करना, उस रिलेशनशिप में अधिक फैमिलियरिटी ना हो, क्योंकि जितना व्यक्ति समीप आने लगता है, हमने देखा है कुमार ज्ञान में आते हैं तो सेंटर की बहनें देवियां नजर आती है, पर जैसे जैसे उनके समीप जाते हैं तो उनमें सारे अवगुण दिखाई देने लगते हैं और फिर ज्ञान को छोड़ के चले जाते हैं। मुरलियों में कितनी बार आते हैं, अरे तुम मुझसे क्यों नाराज होते हो, बाबा कहते हैं मुझे क्यों छोड़ देते हो, बाप को डिवोर्स दे देते हैं। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, इंग्लिश में कहावत है, अधिक समीपता जहां घनिष्ठता हो जाती है घृणा उत्पन्न होती है। इसलिए अपनी दृष्टि को, अपनी वृत्ति को, अपने बोल को, अपने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को, अपने धन कमाने की क्षमता को थोड़ा बाजू रखो। अगर चाहते तो जो यहां बैठे हैं संसार में वो भी बहुत धन कमा सकते थे, क्या नहीं कमा सकते थे? वो भी बहुत पढ़ाई कर सकते थे और लौकिक डिग्रियां प्राप्त कर सकते थे, परंतु किसके लिए सब कुछ छोड़ दिया? एक सेंटर में रहना एक बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या। इसलिए ये संकल्प करो सभी कि आज से हमारे मुख से किसी भी बहन के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं निकलेगा, एक भी टीका नहीं, एक भी टिप्पणी नहीं, और उनके प्रति संपूर्ण आज्ञाकारिता का भाव होगा। हमको ये लगता भी है कभी कभी ये स्वार्थी है, परंतु देखो उनको किस लिए वो कर रही है, सब स्वार्थ में भी विश्व कल्याण समाया हुआ है। क्या अपने लिए कर रही है? जो कुछ भी है सब कुछ इस यज्ञ अर्थ है, जो कुछ भी है एक ही आंतरिक अंतस में शुभ भावना है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। क्यों ये अमृत सरोवर बना है? असंख्य आत्माओं की सेवा हो, जो हमने पाया है सब पाए, सबको अनुभव हो, क्या यही विशुद्ध संकल्प नहीं है? इसलिए इस पहली धारणा को मजबूत करना है। संपूर्ण पवित्रता। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कहानी लिखी है बहुत सुंदर, जिसका नाम है द लास्ट पोएम, शोशूर कविता, बंगाली में लिखी है। उस कहानी में एक युवक है और एक युवती है। उस पुरुष को उस स्त्री से बहुत प्यार है, उस स्त्री को भी उस पुरुष से बहुत प्यार है। स्त्री बहुत ही अमीर है, पुरुष गरीब है, दोनों ही शादी करना चाहते हैं, परंतु वो स्त्री जो है एक शर्त रखती है। वो कहती है, हम शादी तो करेंगे परंतु तुम मेरे साथ नहीं रहोगे। सामने वो जो महल है वहां तुम रहोगे, यहां मैं रहूंगी, और बीच में एक झील है। वो कहता है, ये कैसी शादी है? शादी कर रहे हैं और साथ ही नहीं रहेंगे, ये भी कोई शादी है? वो कहता है, यही शादी है। अगर हम मिले तो आमंत्रण देकर नहीं मिलेंगे, तुम उधर से आ रहे हो मैं इधर से आ रही हूं, मिल लिए तो मिल लिए, तुम इधर से नौका विहार मैं इधर से नौका विहार, और मिल लिए। वो कहता है, आखिर क्यों? वो स्त्री कहती है, क्योंकि जब व्यक्ति साथ साथ रहने लगते हैं तो दोनों में घनिष्ठता बढ़ती है, वो जो फ्रेशनेस है रिलेशनशिप की वो खत्म हो जाती है। इसलिए अगर तुम्हें किसी और से शादी करनी है तो तुम कर सकते हो, परंतु मैं केवल तुमको ही याद करूंगी और तुम्हारी याद में अकेली ही रहूंगी, और करूंगी भी शादी केवल तुमसे, परंतु शर्त यह है कि तुम उधर और मैं इधर, बीच में झील। और यही सिद्धांत है संबंधों का। संबंधों में कड़वाहट भी आती है किससे? घनिष्ठता से। और मोह भी उत्पन्न होता है किससे? मोह, और फिर वो विकार की ओर दौड़ाता है घनिष्ठता से। इसके लिए बीच में क्या हो? झील। वो उधर, हम इधर। डिटैचमेंट हर संबंध में, लौकिक अलौकिक सब संबंधों में, क्योंकि अलौकिक संबंध में यदि डिटैचमेंट ना हो तो वो डिटेरियोरेट हो जाता है, पतन होता है उसका। इसके लिए वो अलौकिकता हमेशा रहे, और उसके लिए हमारी दृष्टि भी यदि श्रेष्ठ रखनी है सभी बहनों के प्रति, तो डिटैचमेंट। सेवाएं संपूर्ण करनी है, परंतु ध्यान रखना है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा, दोष उम्र का है, दोष ना तो स्त्री का है और ना ही पुरुष का, दोष किसका है? उम्र का है। जन जन से विकार इस देह में भरे हैं। बहुत बड़ी साधना है ब्रह्मचर्य की। इसलिए कभी भी संकल्प स्वप्न में भी किसी का विरोध करने का संकल्प, इस महायज्ञ का विरोध करना है, बहुत बड़े दंड का भागी बनना है, तो ये पहला नियम, पहली मर्यादा। दूसरी मर्यादा, भोजन। बहुत सारी बातें आप जानते हैं, परंतु फिर भी कुछ बातें हम कहेंगे। भोजन जो हम करें, हमने देखा एक गृहस्थ परिवार था, जो भी चीजें लाते थे सबसे पहले बाबा को भोग लगाते थे, बाबा के सामने रख देते, सैलरी आई पैसे बाबा के सामने, सब्जी लाई सब्जी बाबा के सामने, हर चीज बाबा के सामने। कितना समर्पण भाव था। तो इस भोजन की भी कद्र। ये दुख भंजक भोजन है और मुख्य रूप से जब सेंटर में आते हैं या तो मधुबन में आते हैं, हमने देखा इतना सारा ले लेते जैसे खत्म हो जाएगा और फिर वैसे ही छोड़ देते हैं। बाबा ने कहा एक एक कणा मुहर के समान है। यदि हमको पता है कि ये खाना नहीं है तो हम क्यों उसको ले रहे हैं, या अभी हमने कभी इसके पहले वो चीज कभी खाई नहीं है तो थोड़ा सा ले, टेस्ट करो, ठीक लगा तो लेना। पहले ही इतना ले लेते हैं, हम देखते हैं मधुबन में भाई बहने दूर दूर से आते हैं सेवा ये पार्टी वाले, और थालियां वैसी की वैसी रहती है। चाय लिया उसमें थोड़ा सा है वैसे ही रख दिया। हर चीज को जहां के वहां रखना है। जैसे घर को अपना घर समझते हो और कोई भी चीज यदि कचरा है तो वहां से हम फेंक देते हैं, इस सेंटर को भी अपना घर समझना है। अपना घर, यहां पर कोई भी गंदगी ना हो, यहां पर इकोनॉमी का पार्ट जितना हो सके हम पर, हमारी वजह से किसी पर बोझ ना हो, खर्चा ना हो, इसके लिए इकोनॉमी का भी पार्ट, अपनत्व का भाव, इस कार्य को अपना कार्य समझना है। बाबा ने कहा है एक पाई पैसे यहां लगाओगे तो कितने मिलेंगे तुमको, लाखों हजारों मिलेंगे, और वैसे भी जो धन है व्यर्थ ही जाने वाला है। जो भी धन हमारे पास है पकड़ के रखे हैं हमने, उस धन को पुण्य कार्य में लगाना है, उसको तो उसका कई गुना अधिक होकर मिल जाएगा। जिस जिसने ये सब का अनुभव है, जिस जिसने इस कार्य में लगाया अपना सब सर्वस्व, कई गुना होकर उसको मिला है। परंतु उसमें भी हमने देखा है कि लोग आत्माएं उसमें भी नुक्स निकालते हैं, दोष देखते हैं फिर बहनों में भी। ये कभी ना सोचना कि ये जो दिया जा रहा है किसी व्यक्ति को दिया जा रहा है, ये सीधा कहां जा रहा है, यज्ञ में, यज्ञ की वेदी पर अर्पण कर रहे हैं हम। तो भोजन की बात और धन की बात दोनों ही चीजें इसमें है। भोजन को भी वेस्ट नहीं करना है। जिस तरीके से हम भोजन जो खाना या कमाई कर रहे हैं उसकी भी चेकिंग, दो नंबर का है, पीड़ा देकर प्राप्त हो रहा है वैसा तो नहीं होगा। दूसरा है रसोई। दादी जानकी कहती थी कि यदि दादी जानकी को क्लीनलीनेस इतना पसंद है कि कहीं पर भी जाती थी किसी के घर तो सबसे पहले किचन देखती थी, किचन कितना साफ सुथरा है। तो जिस स्थान पर हम भोजन बनाए, जो लोग भोजन बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है भारतीय संस्कृति में पता है, महाराज, महाराज कहते हैं ना, उनका एक ही वस्त्र होता है बड़ा, और उस एरिया में किसी को आने नहीं देते, सिलाई नहीं होती है, इतनी प्यूरिटी। कर्मेंद्रिय जीत की जैसे वो प्रतीक है। तो जो भोजन हम बनाए, जिस किचन में हम भोजन बनाए, वो किचन भी साफ सुथरा पवित्र शुद्ध हो। और इस सभा में कौन कौन सी माताएं हैं जो रोज भोग लगाती है 24 घंटे में एक बार, और बाकी बाकी नहीं, कौन कौन कुमार है जो खुद खाना बनाते हैं और भोग लगाते हैं, कौन कौन अधर कुमार है जो खुद खाना बनाते हैं या भोग लगाते हैं, अच्छा कौन कौन है जो भोग लगाते हैं, भोजन बनाना 24 घंटे में एक बार सभी माताओं को आज से, ठीक है, उसकी विधि भी बहनों से सीख सकते हैं। क्योंकि हम भोजन भोग लगाना ये भक्ति की जैसी परंपरा है, परंतु इसमें हम प्रेम प्रकट कर रहे हैं अपना, और भगवान किस चीज का भूखा है, क्या चाहिए उसे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रेष्यति, मुझे पत्र पुष्प और फल बस ये मैं ले, ये भी अगर कोई दे दे तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। उसे ऐसे 56 प्रकार के भोग नहीं चाहिए, कुछ भी दे दो, पत्र पुष्प। हम तो ये कहेंगे कि जो लोग भोजन नहीं बनाते वो भी भोग लगाए, फल का पानी का किसी का भी लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान ये थोड़ी देखता है क्या है। अगर संभव ही नहीं है, कोई कहते हम भोग लगाते ही नहीं, हमको तो बना बनाया भोग लगा हुआ मिलता है, परंतु हरेक को लगाना है, हरेक को प्रेम है उसमें, और उस भोजन में जो आ सकती है वो कम होती है उससे, नहीं तो वो स्वाद लोलुपता काम की ओर ढकेल कर ले जाती है। तो भोजन धन, अगला नियम है सेवाएं मर्यादा। सेवाएं जो भी हम करें, हमने देखा कहीं पर लोग अपना ही प्रोग्राम बना लेते हैं बिना पूछे, अपना ही डिसीजन ले लेते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, या हा भी हो जाते हैं कि ऐसा ही करो। क्या ये आज्ञाकारिता का पाठ है? प्लान हम सब बनाए, परंतु फाइनल जो होगा वो उसी आत्मा के द्वारा होगा जो निमित्त है। ये नहीं समझो कि ये इसकी बुद्धि है, ये समझो कि स्वयं भगवान उसे प्रेरित कर रहा है। वो सारे स्वमान लाओ कि ये आत्माएं कौन है, और इसको हम भूल जाते हैं बार बार। सेवाओं में आज्ञाकारिता का पाठ। कई लोग कहते हैं हम आ रहे और आते ही नहीं, उनको बुलाओ 5 बजे आ जाओ तो 6 बजे आते हैं, उनको कोई सेवा दो तो भूल जाते हैं। अरे हम यदि ज्ञान और योग नहीं कर पा रहे तो कम से कम सेवा तो करें, यज्ञ में कुछ तो दे, समय नहीं दे पा रहे धन तो दे दे, कुछ तो दे। जन्म जन्म के पापों का बोझ सर पर है, कैसे हटेगा? तो सेवाएं, सेवाओं में आज्ञाकारिता का भाव। अगली मर्यादा मधुबन जाने की। हम देखते हैं कई लोग विकारी लोगों को भी वहां पर इधर उधर से कुछ करके पहुंच जाते हैं। यहां तक कि हमने देखा है कभी कभी डायमंड हॉल में कोई बाबा से मिल रहा है पीछे, और बाहर जाके सिगरेट पी रहा है। बहुत कटु सत्य है ये। एक बार हमें अपने ही जीवन का याद है, जब हम मधुबन में थे 2003 में, वहां पे कुछ ऐसे लोग थे हमारे रिश्तेदार, वो आ गए बाबा से मिलने। हमें आश्चर्य लगा ये कैसे आ गए, और बाबा से मिले और बाद में बहुत निंदा करने लगे, यहां तो कुछ नहीं है, यहां तो ऐसा है, वहां तो वैसा है। हम ऐसे निमित्त न बन जाए कि हमारी वजह से किसी का मधुबन का इंप्रेशन खराब हो जाए, और वहां जाने के बाद में भी नियम पूर्वक रहे, मर्यादा पूर्वक रहे, वहां कोई झगड़ा ना हो, वहां वाद विवाद ना करे, भोजन पर टीका टिप्पणी ना करे, और सबसे महत्वपूर्ण मधुबन निवासियों पर कोई टीका टिप्पणी ना करे। जैसे ये बहन यहां है वैसे वो मधुबन निवासी वहां है, हो गए उनके संस्कारों में कुछ दोष, परंतु जीवन को अर्पण किया है, उस आयु में अर्पण किया है जब संसार के लोग विकारों में डूबे हुए थे। हमें दोष दिखाई दे रहे होंगे, आज की मुरली अगर व्यर्थ भाव किसी के प्रति है तो पवित्रता नहीं दी जा सकेगी उनको। यदि उसकी कमजोरी और अशुद्धि को धारण किया है तो पवित्रता नहीं दी जाएगी। इसलिए क्या करना है, अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाना है। बहने जा सकती है अगर कुछ उनकी सेवाएं हो तो। कुछ महत्वपूर्ण नियमों की चर्चा करेंगे। इस ब्राह्मण जीवन का सबसे पहला नियम है अमृत वेला। इस सभा में ऐसे कितने लोग हैं कि पिछले एक मास से एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं किया, वो हाथ खड़ा करें। एक दिन भी जिन्होंने अमृत वेला मिस नहीं किया, याद रखना ये इंद्र सभा है, ये साधारण सभा नहीं है, इंद्र सभा है। ऐसे कौन है जिन्होंने पिछले 15 दिन में एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं किया? ऐसे कौन है जिन्होंने एक हफ्ते में एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं किया? ऐसे कौन है जिन्होंने पिछले 3 दिनों से रेगुलर अमृत वेला कर रहे हैं? ऐसे कौन है जिन्होंने अब तक रोज मिस किया, आज ही मिस नहीं किया बस? तो ये भी है, अमृत वेला शक्ति भरने का समय है। बाबा ने कहा है अमृत वेला गाड़ी को पटरी पर डाल दो तो अपने आप चलती रहेगी दिन भर। अगर अमृत वेला ही मिस हो रहा है, अमृत वेला ही शक्तिशाली नहीं, अमृत वेला ही पावरफुल नहीं, अमृत वेला ही कोई अनुभव नहीं, तो ये ब्राह्मण जीवन का क्या अर्थ है? फिर सारी दिन भर गलतियां होती रहेगी। इसके लिए इस भट्टी से यदि ये एक पाठ भी पक्का करके जाएंगे सभी, तो हम समझेंगे ये भट्टी सफल हुई। केवल ये एक पाठ, केवल ओनली वन एंड ओनली वन चैप्टर, अमृत वेला। तो सभी अमृत सरोवर में बैठकर ये संकल्प करेंगे अभी अभी कि आज से एक दिन भी उसके लिए, परंतु कुछ बातें करनी होगी। रात को सोने की विधि, यदि रात को 12 बजे तक जाग रहे हैं तो कैसे उठ पाएंगे? यदि बहुत ही हेवी भोजन कर रहे हैं तो कैसे उठ पाएंगे? यदि व्यर्थ में जी रहे हैं तो कैसे उठ पाएंगे? यदि टीवी, मोबाइल और इंटरनेट में लगे हैं, रात को टेलीविजन सीरियल कौन कौन देखता है वो जरा हाथ खड़ा करो। अच्छे अच्छे सीरियल, इंद्र सभा है, धर्मराजपुरी। अगर टीवी देखने में हमारा समय जा रहा है तो कैसे हम परमात्मा से मिलन, आज के बाबा ने कहा रूहानी गुलाब अर्थात रूहों के मालिक से रूह रिहान करने वाले, कैसे करेंगे जब विश्व की आत्माओं से रूह रिहान करने में या उनकी देखने में और सुनने में लगे हैं? वो भी परचिंतन ही है, टीवी अर्थात परचिंतन। बाबा ने कहा है टीवी अर्थात टीवी, सिनेमा अर्थात सिन की मां। ऐसे कौन कौन कुमार है उनको मूवीज देखना बहुत पसंद है? कुमार, कुमार कम है शायद। एक बात नहीं भूलना, वो 3D है, 3D का देखा हुआ भूलता नहीं, किताब भूल जाएगी, इसके लिए सावधान। तो अमृत वेले का आधार है रात के सोने की विधि। एक 95 की मुरली केवल इसके ऊपर है, कैसे सोना है। बाबा को अपना चार्ट देना है, डायरी लिखनी है, डायरी में याद का चार्ट लिखो या दिनचर्या लिखो, दोनों भी लिख सकते हैं। तीसरा, कुछ तो अच्छा अव्यक्त महावाक्य पढ़ के सोना है, बहुत नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा। और सबसे बेस्ट टाइम है योग करने का जब खटिया पे लेट जाते हैं तब, क्योंकि हमारा सोते समय जो अंतिम संकल्प होता है उठते ही वो पहला संकल्प होता है। इसलिए श्रेष्ठ योगी अवस्था में बाबा से बात करते हुए, याद करते हुए, अशरीरी अवस्था में सोना है तो कहीं अमृत वेला आंख खुलेगी और हम श्रेष्ठ अनुभव कर पाएंगे। नहीं तो अमृत वेला तो उठे पर नींद, भयंकर नींद। अभी देखा उठे बैठे, अभी देखा तो 4 बजे थे, अगला बार देखा तो 4:45, आंख यहीं बंद हो गई, कैसे 1.5 घंटा निकल गया पता ही नहीं। नींद में जाना अर्थात वेस्ट, वो खाली उठने के मार्क्स मिल जाएंगे थोड़े से, बाबा ने कहा उठने के भी मार्क्स है। कोई कोई है ऐसे, कितने हैं जो खटिया पर बैठकर अमृत वेला करते हैं, जहां सोते हैं वहीं बैठो और अमृत वेला, अमृत वेला उठ के। अगर नींद आती है तो चलते फिरते अमृत वेला करना है, चलते फिरते, परंतु अलग कमरा हो तो बहुत अच्छा, छत पे करो, वॉक करो, घूमो, नींद ना आए। पर अगर नींद ही आ रही है तो क्या अर्थ है उसका? एक भाई था, उसको इतनी नींद आती थी अमृत वेला कि उसने क्या किया, रोज अलार्म सेट करके रखता था 4:45 का, परंतु जैसे ही बजता था हाथ मारा, बंद किया और सो गया। तो रोज अमृत वेला मिस और रोज दुख, रोज ग्लानी। तो उसने क्या किया कि ऐसा अगर करूं कि थोड़ा उठना पड़े तो हो सकता है। तो दूसरी जो खटिया थी उसके नीचे डाल दिया उसने वो वॉच, उसके बाजू में जो खटिया थी कॉट के नीचे डाल दिया, ताकि वो बजेगा जो अलार्म तो उठना पड़ेगा, नीचे घुसना पड़ेगा, और तब तक तो नींद तो टूट जाएगी ना। तो दूसरे दिन अलार्म बजा, वो उठा, ढूंढा, वॉच थी नहीं, उसको याद आया मैंने नीचे रखी है, नीचे घुसा, बंद किया और वहीं सो गया। ऐसा भयंकर प्रकोप नींद का। मनोरिंद्रा दादी एक बार मुरली चला रही थी, सामने तीन चार माताएं थी, भयंकर नींद कर रही थी। दादी ने कहा उठो सब और सीधा पीछे जाके खड़ी हो जाओ मेडिटेशन हॉल में, परंतु माताएं ऐसी महारथी थी नींद में कि खड़े खड़े सोना चालू कर दिया। फिर ऐसा भयंकर प्रकोप नींद का। शत्रु की तरह आ जाती नींद, ऐसा लगता है अभी 4:05 है, बस 5 मिनट सो जाता हूं, उठते हैं तो 5। क्या करें, स्वयं की स्टडी करो, क्यों अमृत वेला मिस हो रहा है, क्या कारण है, पूछो किसी से, क्या करूं, बहनों से आके पूछो क्या किया जाए, क्या हो रहा है, अनिद्रा है, अति निद्रा है, क्या हो रहा है कि नींद ही नहीं आती है रात भर। रात भर हमारे पास कुछ कुछ माताएं आती कहती है रात भर नींद ही नहीं आती, बस छत की तरफ देखते रहते हैं, पूरी रात निकल जाती है, 3 बजते हैं 4 बजते हैं फिर नींद आती है, थोड़ी सो जाती है, अमृत वेला भी गया नींद भी गई। अगर कोई शारीरिक समस्या है तो डॉक्टर से जाके दवाई लीजिए, अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, विटामिन्स की कमी है तो उसके इंजेक्शंस, परंतु अमृत वेला शक्तिशाली। दूसरा पॉइंट है मुरली, कौन कौन है जो मुरली यहां आके सुनते हैं और कौन कौन है जिनको लगता है यहां मुरली आने की जरूरत नहीं, हम घर पे पढ़ लेंगे मोबाइल में। बाबा ने नियम बनाया है सेंटर पर जाकर ही सुनना है, क्यों, क्या अंतर है, एक है घर पे बैठ के पढ़ लेना, दूसरा है सेंटर पे जाना, क्या अंतर है, वायुमंडल, वाइब्रेशंस, संगठन, बहुत सारी चीजें हैं, वाइब्रेशंस मिलते हैं, अकेले पढ़ने में इतनी शक्ति नहीं भरती है जितनी कि वायुमंडल का सहारा जहां मिलता है, और वहां आप सुनते सुनते योग के प्रयोग कर सकते हो, कौन सुना रहा है, कौन सामने बैठा है। कल हमने सुनाई थी ना 26 मेथड्स मुरली रीडिंग की, तो ऐसे अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं। तो मुरली रोज सेंटर पर आकर सुनना, एक रोज मुरली पढ़ना, केवल सुनना नहीं पढ़ना, जो मेथड्स कल सुनाई थी अलग अलग उसमें से कोई भी एक मेथड ले लो, रीडिंग अलाउड मेथड, ऑडियो मेथड, स्टॉप इन बिटवीन मेथड, टेक्स्ट मेथड, टेक्स्ट टू ड्रिल, ड्रिल बनाओ, एक एक शब्द लो उसकी गहराई में जाओ, वर्ड सेंटेंस कैची वर्शन, अलग 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 पर कुछ करो, स्टडी करो उसको, मेमोराइज करो, कुछ कुछ पावाक्य इतने पावरफुल महावाक्य होते हैं कि याद करने जैसे है, एकदम उसको पकड़ लो, क्योंकि परिस्थितियों में यही वाक्य काम आएंगे, यही वाक्य परिस्थितियों में काम आएंगे। तो ये बात मुरली। तीसरा है ट्रैफिक कंट्रोल, बहुत बार ट्रैफिक कंट्रोल होता रहता है, हम व्यस्त रहते, अगर वो टाइम सूट नहीं करता तो अपना ट्रैफिक कंट्रोल खुद बनाना है, अपना ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम खुद चुनो, और उस समय क्या करना, आत्मिक स्थिति में स्थित होके एक तो किरणें फैलाओ, कोई योग का अभ्यास करो, अगर कुछ भी नहीं होता है तो मुरली की पॉइंट्स तो याद करो, कम से कम आज सुबह जो सुनी थी, पता चलेगा कुछ भी याद नहीं है तो फिर निकालो, फिर पढ़ो, रिवाइज करो, और बहुत बड़ी डायरी में लिखने से अच्छा छोटी सी डायरी में अगर पॉइंट्स लिखे तो वो जेब में रह सकती है भाइयों के लिए, ताकि बीच बीच में उसको खोले और उसको रिवाइज करे। तो ट्रैफिक कंट्रोल, इसमें नियमों में और भोजन आता है, जो हमने मर्यादाओं में कहा, भोजन योग युक्त होकर स्वीकार करना है, धन्यवाद के भाव से स्वीकार करना है, समान में रहकर स्वीकार करना है, उसमें कंप्लेंट ना हो, इसमें नमक कम है, इसमें ये कम है, उसमें वो कम है, इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है, कंप्लेंट जो है ना निगेटिव एनर्जी है उसमें, और धन्यवाद जो है थैंक्स, उसमें पॉजिटिव एनर्जी है। सबको धन्यवाद करो, उस किसान से लेके, उस प्रकृति से लेके, उस जमीन, वो किसान, बनाने वाले, भोग लगाने वाले, कमाने वाले, सबको धन्यवाद। और एक सुंदर अभ्यास है भोजन का कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जैसे भोजन करना। हम भोजन कर रहे हैं और एक एक जो कण है विश्व की हर आत्मा को जा रहा है। अलग 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 प्रयोग भोजन बनाते समय, ये एक और एक महत्वपूर्ण बात, जब भोजन बनाए एक एक चीज जो उसमें डाल रहे, तेल डाल रहे, जो भी डाल रहे, उस एक एक वस्तु को भी सकाश देते देते डालना। शास्त्रों में तो है ना स्वाहा स्वाहा या जो कुछ करते इस तरह से, तो ये भी यज्ञ है, भोजन यज्ञ। ब्रह्मा भोजन बन रहा है ना, दुख भंजक है वो, तो भोजन। फिर उसके बाद में है कर्मयोग, कर्म जो कर रहे हैं उसमें बीच बीच में थोड़े थोड़े योग के प्रयोग। जगदीश भाई कहते थे एकदम ज्योति बुझ ना जाए, जैसे 9 बजे तक एकदम पावरफुल, 9 बजे ड्यूटी पर गए कि खलास, फिर बाबा भी है ये भी भूल गया, सीधा याद आया 5 बजे 6 बजे ड्यूटी पूरी होने के बाद, अभी कहाँ है, अभी चलो याद करते हैं उसको, तब तक पूरा ब्लैंक, क्योंकि ड्यूटी ऐसी होती है सेवा, उसमें सब भूल जाता है। तो ये जो याद की और ज्ञान की लव है थोड़ी थोड़ी बुझती रहे, जगती रहे उसमें, ताकि इवनिंग में फिर से चार्ज हो सके। तो सुबह एक बार चार्जिंग, इवनिंग में एक बार चार्जिंग, और दिन भर में थोड़ा 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 अभ्यास, योग का अभ्यास, ज्ञान की पॉइंट्स को याद करना। यदि कोई साथी है साथ में उससे डिस्कस करना कि आज बाबा ने क्या कहा था, वरदान में क्या कहा था, मुरली में क्या कहा था, स्लोगन में क्या कहा था। पर जिनको इंटरेस्ट है उन्हीं से डिस्कस करना, जिनको इंटरेस्ट नहीं है उनसे नहीं, क्योंकि ज्ञानी को ज्ञान देने से एलर्जिक रिएक्शन होती है जबरदस्त, इसके लिए थोड़ा संभाल के, नहीं तो एनाफिलैक्टिक शॉक रिएक्शन हो जाती है, तो थोड़ा संभाल के। शाम को नुमा शाम का योग 6:30 से 7:30, जिन्होंने अभी तक इसको पक्का नहीं किया है इसको पक्का करें। अगर 6:30 से 7:30 नहीं होता है तो 7 से 7:30 कम से कम, ठीक है। तो नुमा शाम का योग, फिर है रात्रि का सोने की विधि जिसके बारे में हमने बता दिया। तो ये तो कुछ बातें हैं जो हमने बताई अनुभव से, और जो देखी और जो ज्ञान से समझी। इन सब बातों को अपने जीवन में मुझे कैसे धारण करना है, इसका चिंतन हर एक को करना है। अमृत वेला शक्तिशाली कैसे हो, मुरली कैसे याद रहे, कैसे धारण हो, ट्रैफिक कंट्रोल कैसे करे, भोजन कैसे योग युक्त बनाए और खिलाए, सेवाओं में क्या नवीनता लाए, योग में क्या नवीनता लाए, शाम के योग में, रात्रि को सोने की विधि जो है उसको कैसे चेंज करे, क्या कंप्यूटर पे लगे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप में लगे हुए हैं, कहाँ है। तो ये जो नियम और मर्यादा क्या है, कवच है। धरती पर तो कांटे तो होंगे, पर ये कवच यदि हमने पहना है तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो इस क्लास को यहीं पूरा करते हैं। ओम शांति।